कपिल उन्हें आश्वस्त किए समुदितः तेन, मतलब अच्छी तरह से जब संबोधित किया कपिल ने, उन्हें आशीर्वाद दिया और अंततः कहा कि जिस प्रकार से वे आध्यात्मिक पथ पर चले हैं, आध्यात्मिक मार्ग में सिद्धि को प्राप्त करेंगे, वैसे ही वे अपनी माता देवहूति को भी उपदेश देकर उनका भी उद्धार करेंगे। तो इस तरह से जब अच्छी तरह से बतला दिया, या अन्य शब्दों में जब भगवान के वचन सुने, भगवान की वाणी का श्रवण किया कर्द मुनि ने, जीवन के प्रारंभ में भी तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किए, और अभी है जीवन का अर्थात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व वे भगवान का आशीर्वाद ग्रहण किए थे, और अब वानप्रस्थ की ओर जब निकल रहे तब परंतु उनकी भगवत्ता को जानते हुए उनसे आशीर्वाद वे ले रहे हैं, अर्थात हम जो कुछ भगवत सेवा को, जो भी भगवत क्रिया को करते हैं, भगवत केंद्रित क्रिया को करते, उसमें आवश्यक है कि अनुमोदन हो भगवान का। भगवान के किसी प्रतिनिधि का जब तक अनुमोदन न हो, तब तक उस कार्य में हम निज प्रयास से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत के द्वितीय और प्रमुख से तृतीय स्कंद में वर्णन किया गया है, ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने का प्रयास किए तो उन्हें स्वयं ही ज्ञान नहीं था, वो मोह में पड़े थे, और अंततः भगवान की आराधना की, भगवान की तपस्या की, फलस्वरूप भगवान प्रकट हुए। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत आदि उपदेश दिए, और उपदेश होने के पश्चात अब जब सृष्टि प्रारंभ करनी, वहां वर्णन है कि पुनः ब्रह्मा जी तपस्या के लिए बैठ गए, पुनः वे तपस्या करने लगे, और कई वर्षों तक तपस्या करके एक भगवत प्रचोदित, वहां पर शब्द आता है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेन ब्रह्मा जी गॉट एम्पावर्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान और साधु की वाणी के द्वारा हमें विशेष शक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम कोई भी भगवत क्रिया को कर सकते हैं। कोई किसी भी आश्रम में रहे, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, संन्यास आश्रम हो, किसी भी आश्रम में रहकर जब वो भगवान की सेवा करता है, तो हम अपने शक्ति से, अपने प्रयास से नहीं कर सकते, जिस तरह से आचार्यगण बतलाते हैं कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन, कि जब तक जीव में कृष्ण शक्ति आवेशित न हो तो वह कोई भी सेवा नहीं कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस एक में सोने की क्रिया जिसके लिए भगवान की शक्ति की जरूरत नहीं है। भगवान के बिना आशीर्वाद कैसी नींद आ जाती है, अगर आशीर्वाद रहे भगवान का तो शायद नींद ना आए। तो एकाग्रता पूर्वक श्रवण करने के लिए भी आशीर्वाद चाहिए। तुम्हें पहला शब्द ही देख रहा, एवं समुदितस्ते न, कर्दम ऋषि अपने पुत्र से जो स्वयं भगवान प्रकट हुए उनसे आशीर्वाद लिए, तो अति आवश्यक है कि जो भी क्रिया हम करें उस क्रिया में कृपा को प्राप्त किया जाए। हम भगवत का कथा भी प्रारंभ करते हैं, दिन का प्रारंभ करते हैं, तो प्रत्येक क्षण भक्त के जीवन में देखते हैं कि प्रत्येक क्षण वो पुनः पुनः भगवान को प्रार्थनाएं करते रहते हैं। भक्ति भक्ति भक्त भगवंत भक्त भक्ति भगवंत चतुर्नार वपुर एक, इनके वंदन करे नाशे विघ्न अनेक कहा जाता है। भगवान भगवान के भक्तों के चरण में वंदना की जाती है, समस्त विघ्नों का नाश होता है। जितने विघ्न आते हैं उस पथ में उस मार्ग में, जिस तरह से हम छह गोस्वामी को प्रार्थना करते वहां पर भी कहते हैं छह गोस्वामी करी चरण वंदन जहां इत विघ्न नाश अविष्ट पूर्ण। क्यों ये मंगलाचरण किया जाता है, प्रार्थना क्यों की जाती है? भगवान के समक्ष आते तो प्रार्थना करते हैं, प्रातःकाल गुरुवाष्ट करते हैं, फिर नरसिंह प्रार्थना करते हैं, फिर तुलसी को प्रार्थना करते हैं, फिर हरिनाम को प्रार्थना करते हैं। तो बार बार प्रार्थनाएं की जाती है क्योंकि प्रार्थना करने से हम कृपा को प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। प्रमुख रूप से प्रार्थना करने से हमें दैन्य भाव आता है और फिर भगवान सहजता से प्रसन्न होते हैं उन प्रार्थना को सुनकर। रासलीला में वर्णन किया गया, रासलीला में भी जब भगवान अंतर ध्यान हो गए अंततः गोपियों ने भी प्रार्थना की गोपी गीत के रूप में, और उन्हें सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। और जो अप्रगट भगवान है वे भी प्रकट हो जाते हैं जीवन में जब इस तरह से कृपा याचना की जाती है। त्या करदम उन्हें प्रार्थना किए, फलस्वरूप उन्हें प्रत्युत्तर दिया कपिल भगवान ने। और फिर इस तरह से जब कृपा को प्राप्त कर लिए भगवान की, तब तम प्रीत अत्यंत प्रसन्न होकर, यदि आवश्यक है भगवान की सेवा जो भी आप कर रहे हैं उसमें प्रसन्न चित्त होना आवश्यक है। उद्विग्न मन से, उद्विग्न चित्त से यदि सेवा की जाए तो उसमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने कृपा याचना की और जब भगवान की वाणी को सुन लिया, ये अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह से भागवत में कहा गया ना कैश पिबंति ते भगवत आत्मन सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु संवृतम पुनन्ति ते विषय पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तत् चरण सरोरुहांतिकम। शुकदेव गोस्वामी ये शब्द को वर्णन किए हैं कि जब हम नियमित रूप से सुनते, जैसे यहां पर कर्दमुनि भगवान के वचनों को सुने, तो जब इस तरह से भगवान की कथाओं को श्रवण किया जाता है, भगवान की वाणी, भगवान के जो प्रतिनिधि उनकी वाणी को सुनते हैं, किस तरह से सुनना है तो यहां पर शब्द मधुर पिबंति ते भगवत आत्मन सताम। जहां जहां पर भगवान की वाणी को सुनने के लिए शब्द का है तो वो कहते सुनना नहीं चाहिए भगवान की वाणी को, भगवान की कथा कभी सुननी नहीं चाहिए। वहां पर शब्द पिबंति मतलब पीना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। आप पीते ना आमरस कैसे पीते, गिलास भरो भर के। और कैसे पीना है तो पिबंति ते भगवत आत्मन सताम, भक्तों के संग में बैठकर जब हम भगवत वाणी को पीते हैं, पीते मतलब आनंद के साथ सुनना, एकदम से नहीं कि बोझा लाद दिया गया है, वैसे जब आनंद के साथ जब सुनते हैं उसको। और कैसे कथामृतम, उस कथा के अमृत को पीते हैं, कैसे श्रवण पुटेशु संवृतम, श्रवण पुटेशु अर्थात कानों के प्याले को भर भर के, जो कान का प्याला होता है उसको जब भर भर के संवृतम। संवृतम शब्द का अर्थ है कि पर्याप्त रूप से भर लेना चाहिए उसको, पूरा जैसा आप ग्लास भर लेते हैं ना, जब आम रस मिलता है, आपका अति प्रिय कोई पेय पदार्थ जब प्राप्त होता है, तो आप किस सदैव प्रयास करते हैं पूरा भरकर मिले हमको अधिक से अधिक। तो कथा भी पूर्ण रूप से जब हम भर भर कर पीते हैं, तो भर भर कर पीते इसका क्या अभिप्राय है? भरकर पीना मतलब आप अपने कान को भर लिया, आपने कैसे पता चलेगा? आप कोई भी पात्र को जो भर लेते हैं, पता कैसे चलता है कि पात्र भर गया? हाँ, यह सबसे प्रमुख, जब उसमें छलकने लगे, वो जब पात्र भर जाता है तो उसमें से बाहर छलकने लगता है। मतलब कथा कितना श्रवण करना चाहिए, तो कहा जाता है कि इतना इतना श्रवण करे, इतना सुने कि फिर मुख से भी वही निकलने लग जाए। अभी तो हम सुनते तो इस कान से उस कान, इकड़न तिकड़न गेली वारी नई फूंकली सोनारे। अभी दशा ऐसी कि इस कान से महाप्रसाद सामने आते थे तो सब भूल भी जाते हैं क्या सुना था। वैराग्य तो लगभग 15 दिन से चल ही रहा है, शायद लगभग 1 महीने, कर्दमुनि का वैराग्य, कर्दमुनि का वैराग्य, परंतु सुनने के बाद पता नहीं हमें कितना वैराग्य है अभी तक। हमारा तो वैराग्य कान में से घुसता है, दूसरे कान से निकल भी जाता है। वैराग्य की पूर्णता है कि जब हमारे जीवन में हम वैराग्य को धारण कर सके। तो कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम कहा जाता है कि जब इतना पर्याप्त आप सुन लेंगे, जिसको माता कुंती भी कहती है ना, कैसे हो श्लोक, शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभिक्ष्णश स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भवप्रवाहो उपरमं पदाम्बुजम्। लगभग दोनों श्लोक में आप देखेंगे, पहले मैंने श्लोक कहा सुखदेव गोस्वामी का, वहां पर कहा गया कि जब पर्याप्त रूप से आप सुनते जाएंगे बहुत ज्यादा सुन लेंगे, इतना सुन लो कि फिर आपके मुख से, आपके चिंतन में, आपके विचार में कथा भर जाए। आपके जैसे लगभग कह सकते आपके नस नस में वो कथा घुल जाए। जैसे दवा आप जब औषधि लेते तो औषधि कैसे आपके नसों में पूरी प्रवेश कर लेती है, आपके रक्त जैसे आपके नसों में प्रवाहित होता है, वैसे कथा जब आपके बहने लगे। अभी हमारे जिसको होता है ना, क्या कहते हैं उसे, दो प्रकार का स्नान होता है। एक होता है जब समुद्र के ऊपरी सतह पर तैरना, और दूसरा होता है जिसमें समुद्र के एकदम गहराई तक नीचे उतरना। जो ऊपर तैरते हैं उनको तैराक कहते हैं, और जो नीचे गहराई तक जाते हैं उनको गोताखोर कहते हैं। गोताखोर होते हैं ना, जो अंग्रेजी में कहा जाता है स्विमर, और दूसरा होता है डाइवर्स। स्विमर ऊपर की ओर तैरता है, ऊपर ऊपर तैरता है, और डाइवर जो होता है एकदम डीप ऐसा गहराई में जाता है। लाभ क्या होता है दोनों को, जो ऊपर ऊपर तैरता है अच्छी तरह से तैरेगा तो संभावना कि उसको इस संसार का कोई पारितोषिक मिल जाए, मेडल मिल जाएगा ओलंपिक में, अच्छा तैर ले ऊपर ऊपर तो उसको फिर कोई बहुत बड़ा इनाम मिलता है। परंतु जो गोताखोर होता है वो गहराई में जाता है, और जब गहराई में उतर जाए तो उसको मोती प्राप्त होता है। जो ऊपर की सतह पर तैरता है उसको कोई मोती नहीं मिल सकता है। जिसको मोती प्राप्त करने तो पूरा नीचे तक उतरना ही पड़ेगा, और नीचे तक उतरने में थोड़ा रिस्क रहता है, पता है। इसलिए जब हिंदी में उनको एक शब्द है, जो गोताखोर होते हैं ना समुद्र में गहराई में जाते हैं, उनके लिए शब्द आता है, उनको कहता वापस लौट कर नहीं आऊंगा, गया मतलब गया। जो अपने अस्तित्व को खोने के लिए तैयार हो उसको मोती मिलता है। तो भगवान की कथा जब आप सुने, अपना अस्तित्व ही आप भूल जाए, जिसका तो देह का ही भान न रहे, इतना डूब जाए कथा में, इसको कहा जाता है कथामृतम श्रवण पुटेशु समृतम। किस तरह से देह स्मृति ना ही जा रहा, संसार बना, देह का ही स्मृति नहीं है, ध्यान ही नहीं किया, प्रसाद भी लेना है, इतना सुनने में तल्लीन हो गए। हालांकि कितने बार तो हम सुन चुके, परंतु व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में होता नहीं है। हम जो कथा श्रवण करते हैं, अधिकांश जैसे औपचारिक कथा होती है, जिसको एक फॉर्मेलिटी, सुन लिया आधे घंटे की सुन लिया, और इसलिए परिणाम क्या होता है कि हम कितने बार भी कथा सुन लिए, परंतु जैसे फल यहां पर दिए गए, यहां एक ही शब्द को मैं देगा, प्रीत तम वन में वह जगह, हम अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गया उनका। तो भागवत के भी प्रारंभ में कहा जाता है, आप सुनते हैं, शुण्वता स्वगता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्ती अवद्राणी विदनोति सरसताम। कि कथा को जब श्रवण करते हैं, कथा कैसी अत्यंत पवित्र करने वाली है। पवित्र कब करती है? जब इस तरह से पर्याप्त आप कथा में अपने आप को डुबो देते हैं। कथा में जब व्यक्ति डूबने लगे, डूबना समझना था, एक होता तैरना दूसरा डूबना, जब व्यक्ति डूबता है ना, उसका लक्षण होता है कि उसके नाक में उसके कान में सब पानी घुसने लगता है, मतलब समझने की डूब रहा है वो, पर कान में पानी चला जाता है, नाक में पानी चला जाए एकदम। तो ऐसी जब अवस्था हो जाए तो आपके पूरे अंदर घुसने लगे जब कथा, तो समझने की व्यक्ति डूब रहा है कथा में। और ऐसा जब हो तो फिर क्या होता है, कैसे श्लोक, पिबंति ते भगवत आत्मन सताम। सताम मतलब साधु की संगति में कथा को पीते, कैसे, कथा अमृतम श्रवण पुटेशु समृतम। उस कथा को कान रूपी प्यालों से भर भर के जब पीते तो क्या होता है, पुनंति ते विषय विदूषिताशयम, तब पुनंति, पहला शब्द है पिबंति, जब पिएंगे तो फिर क्या होगा, पुनंति, पुनंति मतलब पवित्र हो जाते हुए, उनका जीवन अत्यंत पवित्र होता है। विषय विदूषिताशयम, जो दूषित हो चुका है मन, गत दो दिनों से हम श्रवण कर रहे थे भक्तों के संग में जब बैठे थे, कि चित्त कैसे दूषित हो जाए इस संसार के रूप को देखकर, इस संसार के विभिन्न रसों को ग्रहण करके, जिह्वा से हम जब रस ग्रहण करते हैं और दृष्टि से विभिन्न रूपों को जब देखते हैं, तो आज गांधी जी के तीसरा बंदर आता है, परसों हमने पहला विषय सुना था, बुरा मत देखो, और कल श्रवण कर रहे थे कि कैसे भालो ना खाई वे, जिसको रघुनाथ दास गोस्वामी भी कहे कि जिह्वा को शुद्ध किया जाए, दृष्टि को शुद्ध किया जाए, तब चित्त पवित्र होता है। जब संसार के रूप को आप नहीं देखते हैं, संसार के विषयों को आप ग्रहण नहीं करते हैं, तो फिर चित्त शुद्ध होता है। परंतु पूर्व जो गंदगी भर चुकी है आपके मन में, हाँ अभी आंखों को आपने रोक दिया, आप गलत नहीं खा रहे, तो फिर संसार की गलत जो वासना आप में प्रवेश नहीं कर रही है, परंतु पूर्व की वासनाएं तो बहुत भर चुकी है ना, तो वो कैसे निकलती है? तो कहा जाता है कि प्रमुख रूप से जब आप निरंतर कानों से आध्यात्मिक शब्दों को सुनने लगते हैं, बहुत अधिक सुनना चाहिए, अभ्यास सुनने का अभ्यास बहुत अधिक हो। विशेष जो भक्त है, कई बार कुछ लोग कहते भी, जब इनको माला दी जाए तो कहते प्रभु जी जप करते, परंतु जप में मन नहीं लगता है। कितनों का अनुभव है, लगभग अधिकांश भक्तों का अनुभव है। तो वहां पर परम पूज्य सचिनंदन महाराज श्री प्रभुपाद के वरिष्ठतम शिष्य, वे भी कहते हैं कि नाम में कैसे मन स्थिर होता है, तो कहा जाता है कि आप नियमित रूप से बहुत अधिक समय जब भागवत का अध्ययन करते हैं। दो चीजें, एक है भागवत का श्रवण जो हम लगभग करते हैं, कैसे खींचतान के जबरदस्ती आधा पौन घंटे के लिए सुन लेते हैं, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा। परंतु उसके साथ है कि अपने दैनंदिन जीवन में जब भागवत का अध्ययन किया जाए तब क्या होगा, तो वहां पर तदारजस्तमो भावा कामलोभादयश्चये चेत एतैर अनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। क्या कहा गया वहां पर कि तदा रजस्तमो भाई, हमारे हृदय में रजोगुण और तमोगुण का प्रदूषण बहुत अधिक है, बहुत अधिक रजोगुण है, इसलिए व्यक्ति बैठ नहीं सकता, एकदम चल विचल होते रहता है कुछ ना कुछ। रजोगुण का लक्षण है कि उसका चित्त स्थिर नहीं, उसमें चंचलता बहुत रहेगी, उसकी दृष्टि में चांचल्य रहता है, नेत्र चांचल्य, कर चांचल्य, वाक चांचल्य, पद चांचल्य और एक है चित्त मन चांचल्य, पांच चंचलता बताई गई है। उसके नेत्र स्थिर नहीं रहता, आप देखना जिनका रजोगुण रहेगा उनकी आंखें से घूमती रहती है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 कृष्ण, आंख बहुत एकदम चंचल रहती है, हाथ में चंचलता होती है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हाथ ऐसा बैठेंगे शांति से नहीं बैठ पाएंगे। रजोगुण का एक लक्षण होता है कि रजोगुण में हाथ भी हिलते हैं और वो बैठता भी एक जगह नहीं बैठ पाएंगे, कभी ऐसे होगा कभी वैसे होगा, पैर भी हिलते ही रहते उसके, ऐसे करते रहते ना वैसे कुछ वक्त होते हैं। तो पद चांचल्य, कर चांचल्य, नेत्र चांचल्य, वाणी चांचल्य, बहुत बोलना, उसको अनावश्यक चर्चाएं करना, यह रजोगुण का लक्षण होता है। और पांचवा फिर बताया गया है, पांचवा जो चंचलता है वह है चित्त चांचल्य, मतलब मन उसका बहुत चंचल रहता है। तो वहां बतलाया जाता है भागवत प्रथम स्कंद में कि जब आप भागवत को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, नियमित रूप से यदि यह संकल्प अपने जीवन में ले कि मैं नियमित भागवत को पढ़ूंगा, प्रतिदिन पढ़ूंगा, सुनते तो एक मन में संकल्प क्या है, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम क्या है, एक साधक के कुछ दोष बताए गए हैं। भगवान का दर्शन करते तो ये एक पक्का मन में विश्वास है कि भगवान हमसे बात नहीं करने वाले, ये पक्का है कि भगवान तो हमसे बात करेंगे नहीं, ये क्या है, ये पत्थर है और ये बात नहीं करेगा। द्वारकाधीश बात करेंगे क्या दयालवराम को, सूक्ष्म रूप से मन में बैठा हुआ एकदम बात। दूसरा साधक का दोष, भगवान की जब सेवा करता है, भगवान को भोग लगाता है तो पक्का मन में दृढ़ विश्वास है कि भगवान ये थाली में का नहीं खाएंगे। ऐसे हम कहते भी है ना कभी कभी कि हम प्रभु जी भगवान का डायरेक्ट महाप्रसाद खाते हैं, राजभोग खाते हैं हम, मतलब मन में क्या विश्वास, राजभोग खाते हैं मतलब भगवान तो खाने नहीं वाले, थाली पूरी भरी वापस आने वाली है, ये पूरा विश्वास है कि भगवान खाते नहीं है, भगवान बोलते नहीं है। तैसे साधक का दोष और क्या होता है, तो कथा सुनते तो कथा सुनने की, ये कथा किस लिए, सिर्फ सुनने के लिए है, हमसे तो कुछ होने वाला है नहीं, कितना भी बोलो बोल दिया ना, सुन लिया बस, सुन लो प्रसाद के टाइम जैसे कथा खत्म हुई तो आज जितना कुछ सुना है वो आधे घंटे के अंदर आपको भूल जाना चाहिए, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो धारण करना चाहे उसका पहला लक्षण, वो तुरंत कुछ पेन नोटबुक लेके बैठेगा कि ये कथा किस लिए है, मेरे लिए है, मैं इसको ग्रहण करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में उतारना चाहता हूं, तो पहला लक्षण होगा कुछ ना कुछ करेगा कि बहुत महत्वपूर्ण कुछ बताया जा रहा है मैं लिखूं। और जिसको अगर ग्रहण नहीं करना उसका लक्षण रहेगा बैठ गए, एक ड्यूटी के लिए होता ना, इसको कहते हैं ड्यूटी, ड्यूटी श्रवण कहा जाता है, ड्यूटी के लिए बैठ गए सुन रहे हैं, किस लिए सुन रहे, हाँ अच्छा होता है सुनना चाहिए, एक घंटा टाइम पास भी हो जाता है, पीछे जाके अगर और कुछ करेंगे संसारी कार्य से बैठ के कुछ सुनते रहो तो कुछ नहीं से कुछ ठीक है, परंतु यह फल प्रदान नहीं करता है। तो यहां वर्णन एक, जब ऐसा कथा को श्रवण किया जाता है आत्मसात जब जीवन में उसे किया जाए तो राजसिकता को निकालता है। जब यह संकल्प आ जाए जीवन में कि अब मेरा दिन पूरा नहीं होना चाहिए जब तक मैं भागवत का अध्ययन न करूं, ये गीता भाग शिल प्रभुपाद इसलिए कहते भी थे, शिल प्रभुपाद कहे कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख है, ये कौन सा दुख है, यही दुख है कि जो मेरे भक्त है, जो कृष्ण आंदोलन के जो अनुयायी है, वो सब कुछ करते हैं परंतु मेरे ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, बाकी सब कुछ करेंगे, वो दुनिया भर का इतना कीर्तन करेंगे, इतना भजन करेंगे, इतना ग्रंथ वितरण करेंगे, आरती करेंगे, सब करेंगे, प्रसाद भी खाएंगे, परंतु एक क्रिया वो नहीं करते हैं, और वह है विश्व से कि इन भागवत गीता इन ग्रंथों का अध्ययन करना। तो यह जब किया जाता है तदा रजस्तमो भावा काम लोभ, रजोगुण का लक्षण है काम, तमोगुण का लक्षण है लोभ। काम जब बहुत अधिक बढ़ जाए तो, और अधिक प्रदूषित जब काम हो जाए तो लोभ में परिवर्तित हो जाता है। जिस कामना के बिना न रहा जाए तो फिर लोभ हो जाता है, लालसा अपने बढ़ने लगती है। भागवत का श्रवण क्या करता है, भागवत अध्ययन, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादेशे चेत एते अनाविद्यम सितम सत्वे प्रसिद्धि। तो तुरंत यह रजोगुण तमोगुण का प्रभाव चल जाता है और सत्व स्थित सत्वे सतोगुण में वह स्थित होता है, और उसका लक्षण है प्रसिद्धि, उसके जो प्रसन्नता होती है। आप देखेंगे विश्व से, मैं अनुभव किया हूं, नियमित जो भागवत का अध्ययन करते हैं वो भक्ति में जीवन में हमेशा प्रसन्न दिखेंगे एकदम सब। जिसको कल मैं एक शब्द सुना, कल रात को एक भक्त से जब चर्चा कर रहा था, कुछ कुछ भक्त जब बहुत एकदम कड़क साधना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अच्छा जब करेंगे बिल्कुल हर चीज नियम से टाइम टू टाइम करते, और आप देखेंगे हमेशा सीरियस रहते एकदम गंभीर, अरे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, गंभीर रहना जो भक्ति में गंभीर रहना बहुत आवश्यक है। परंतु ऐसा जो गंभीर भक्त है उसको रस नहीं मिला अभी तक, इसलिए वो गंभीर है। रस मिल जाए उसका क्या लक्षण है, रस जिसको मिल जाता है वो प्रति क्षण एकदम प्रसन्न चित्त रहता है, वो बिना मतलब कि मुस्कुराते रहते एकदम, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि वो भौतिक दृष्टि से आपका हंसी मजाक कर रहा है, परंतु अंदर से इतना आनंद मिलता है उसको भक्ति का, क्योंकि एकदम प्रसन्न रहता है किसी भी अवस्था में। उसको झापड़ मार दिया तो भी प्रसन्न रहेगा, जो भी उसके जीवन में प्रतिकूलता भी आ जाए फिर भी वो प्रसन्न रहता है। और प्रसन्नता नहीं है मतलब समझना चाहिए कि अभी रस नहीं मिला है, अभी भक्ति कैसे, तो अभी जिसको कहते कल ही था ना, कल सुबह थी ना करेले की सब्जी, कल सुबह ही थी, तो एकदम सूखी सूखी करेले की सब्जी हो तो दाल थी साथ में तो ठीक था ऐसे, तो हमारा भक्तिमय जीवन भी एकदम सूखे करेले की सब्जी बन जाता है, बहुत गंभीर है, साधना भी कर रहे हैं मंगल आरती कर रहे हैं एकदम स्ट्रिक है, रस नहीं है। तो रस नहीं रहे तो क्या संभावना है, तो कहा जाता है यदि आपको रस नहीं मिला तो हमेशा एक खतरा बना रहेगा, आप बहुत गंभीर है भक्ति में परंतु खतरा है कभी पलट के जा सकते हो आप, क्योंकि भक्ति का रस नहीं मिला तो संसार का रस कभी आपको खींच सकता है, क्योंकि यहां तो हलवा तो मिल नहीं रहा है ना, तो हलवा नहीं मिल रहा तो सूखा करेले की सब्जी कब तक खाएंगे, फिर पाव भाजी की याद आ जाएंगी आपको, जब घी का हलवा मिले एकदम बढ़िया तो फिर पाव भाजी की याद शायद ना आए, या झुनका भाकर की याद ना आए, या प्याज लहसुन की याद ना आए। तो रस अति आवश्यक है, रस जो है वो रस मिलने पर फिर संभव क्या कहा जाता है उसके लिए कहा जाता है निष्ठा, निष्ठा या रुचि, रुचि वह अवस्था है जहां से पलट कर आना बहुत मुश्किल है, जैसे कोई चढ़ाव में चढ़ रहा है ना, ऐसा अगर पर्वत पर्वतारोहण कर रहा है तो संभावना है कि कभी भी वो फिसल सकता है। हमने कहा ना जैसे परसों में कह रहे थे, जब चढ़ने में कठिनाई बहुत होती है और बहुत ज्यादा समय लगता है, एक एक पत्थर पे एकदम ध्यान दे के पैर रखना पड़ता है, और गिरना हो तो बस एक पैर फिसला तो पूरा किए कराए पानी, 10 साल आपको लग सकते हैं ऊपर तक पहुंचने, परंतु 1 सेकेंड लगेगा नीचे गिरने के लिए, आपको 50 साल लगेगा एकदम आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, परंतु 1 सेकेंड में आप तुरंत पूरा पर्वत से नीचे आ सकते हैं। तो पर्वत पर ऊपर चढ़ते समय कब तक खतरा है, तो कहा जाता है जब तक वो एकदम समतल भूमि जब तक ना आ जाए तब तक खतरा बना रहता है, और समतल भूमि आ गई मतलब फिर से फिसलेगा नहीं व्यक्ति ना, फिर वो थोड़ा संभावना कम है। तो समतल भूमि मतलब जैसे निष्ठा कहा जा सकता है, परंतु उसके बाद भी वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा ना, आगे बढ़ने के लिए तो वहां कहा जाता है कि फिर आगे फिर क्या है, समतल भूमि है, फिर थोड़ा सा उसे उतार आ जाए तो फिर आपको गाड़ी चलाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार आपने देखा जैसे उतार जब आ जाता है तो क्या करते हैं, राहुल को शायद गाड़ी को बंद भी कर दे, अपने आप नीचे उतरती ना उतार में गाड़ी, बिना स्टार्ट के गाड़ी उतर जाती है, तो उसको कहा जाता है रस, अर्थात वह अवस्था है कि सहज भजन होने लगता है आपका, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, आपकी भक्ति अपने आप होने लगती है, आपके अपने आप हरिनाम आपके मुख से चलने लगता है, आपको सहज भगवान का स्मरण होने लगता है, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जैसे वो कहा जाता है ना गोपी और नारद मुनि का जो प्रसंग है उसमें, कि नारद मुनि देखते क्या करते, क्या देखते कि गोपी से पद्मासन में बैठी हुई है। क्यों पद्मासन बैठी है? बोले ध्यान लगा रही हूं। क्या ध्यान लगा रही हूं? कोशिश कर रही हूं कि किसी तरह से कृष्ण को मन से बाहर निकालू। मैं इतना ज्यादा अंदर घुस गया कि निकल ही नहीं रहा है। हमारी समस्या है कि अंदर घुसते नहीं है भगवान, और उनकी समस्या है कि निकलते नहीं है। तो यह रस कैसे आता है? मैं एक ही शब्द पर देखा, बाकी शब्द तो छूट ही गए। प्रदक्षिणा विधि, प्रीत शब्द जब मैंने देखा, एवं समुदितस्ते न कपिले न प्रजापति दक्षिणीकृत्युतम प्रीत, एकदम प्रसन्न चित्त हो गया, उनका चित्त अत्यंत शांत हो गया जब भगवान की भगवत वाणी को सुना। तो हमारे जीवन में हमको प्रत्येक क्षण चेक करना चाहिए कि हमारे भजन में प्रसन्नता है कि नहीं, क्योंकि दूसरों को देख देख के धक्का मार मार के भक्ति बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। डरा डरा के किया जाए, भक्ति करो कलयुग है, नहीं तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा, यमराज के डंडे पड़ेंगे। डरा के भक्ति शुरू की, फिर दीक्षा हो गई, गुरु अपराध, गुरु को अपराध होगा तुम जप नहीं करोगे, तो और डर गए। अब दीक्षा हुई तो और डर डर के भक्ति करना पड़ता है। फिर हम किसी अधिकारी के नीचे रहते तो वो प्रेसिडेंट है, वो अथॉरिटी है, भक्ति नहीं करेंगे तो तुमको 108 महामंत्र लिखने हैं, फिर और डरा दिया। ये डर डर के कितने दिन भक्ति चलेंगी? बहुत दीर्घ काल तक आप नहीं कर सकते भय के कारण। दूसरा, दूसरों को दिखा दिखा के कितना करेंगे? क्या चलो मैं कोई भक्ति में बहुत उच्च अवस्था पहुंच गया, तो कभी कभी और प्रभु जी अगर भक्ति नहीं करेंगे तो सब लोग देख रहे हैं ना, तो क्या बोलते हैं, देखो ये संत हो गया ऐसे भक्ति नहीं करते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। इतने गंभीर विषय में कैसे नींद आती है कुछ भक्त पता नहीं, एकदम नेचुरल उनका ऑटो मोड रहता है, तुरंत डुलकी खा लेते हैं चांस मिलते बराबर। तो वहां परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बतला रहे थे कि भय के कारण बहुत दीर्घ काल तक भक्ति नहीं होती है। फिर आपको कुछ लोभ दे दिया जाए कि लोभ, हाँ ये मिल जाए तो चलो आपको बदले में इतना दिया जाएगा, अच्छे से जप करो तो क्या होगा, राजभोग प्रसाद मिलेगा आपको, भक्ति करो आप सेवा करेंगे तो क्या होगा, जन्माष्टमी आप सेवा करो तो आपको गिफ्ट मिलेगा, मैराथन में भगवद गीता वितरण करेंगे तो आपको प्राइज मिलेगा। तो कभी कभी लोभ दिखाकर भी भजन किया जाता है, भय दिखाकर भजन किया जाता है, परंतु वो दीर्घ काल तक नहीं चलता है। फिर कभी कभी थोड़ा कर्तव्य कारण, ड्यूटी है अभी भक्ति करना चाहिए, क्योंकि हम शरीर नियम आत्मा है, सुन तो लिया प्रवचन में, अनुभव तो हुआ नहीं है, तो ड्यूटी के कारण भजन। तो ये समस्त प्रकार के जो ये अभिप्राय है, मतलब प्रयोजन है, भय के कारण, आशा के कारण, ड्यूटी के कारण, संसार को दिखाने के लिए, ये भजन परमानेंट नहीं रहने वाला, ये भजन टूटना जरूरी है पक्का, ये जरूर टूटेगा। कब तक? जब तक आपको रस न मिले, खुद रस मिलेगा। मैं अगर आपको कहा जाए, आपको अब गुलाब जामुन दिखाने के लिए खाते हो क्या, सेल्फी निकाल के, देखो मैं गुलाब जामुन खा रहा हूं, अरे मजा आता है गुलाब जामुन खाने में, संसार को दिखाना नहीं पड़ता उसमें। तो जब संसार को दिखाने के लिए भय के कारण, आशय कारण जब भजन न किया जाए, क्यों भगवान की सेवा में कर रहा हूं? क्योंकि जीवन का आनंद इसी में है, भक्ति भक्ति ही आनंद है, और भक्ति के बिना तो सब दुख और कष्ट ही है। तो रस मुझे मिल रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है, इसलिए मैं भजन कर रहा हूं। तो ऐसा जब भजन हो तो फिर उसमें रिवर्स नहीं चलती गाड़ी, उसमें फिर सहज निकलने लगता है। तो तदा तदार्जस्तमो भावा काम लोभा देशे चेतेतरनाविद्धं सदं सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगत भगवत तत्व ज्ञान मुक्त संगस्य जायते। ऐसा जब प्रसन्न मन हो जाए आपका भक्ति में, एकदम प्रसन्न आप रहने लगे, आपको रस मिलने लगे, एवं प्रसन्न मनस भगवद भक्ति योगत, जब आप भगवान से युक्त हो जाएंगे, भगवान से आप एक संबंध की अनुभूति करने लगते हैं, तो व्यक्ति के समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं। तो अन्य भी शब्द थे, उसके शब्द की चर्चा से करनी थी, और मैं लेके वो बैठा था, जो लेकर बैठा वो तो रह गया, छूट गया, घर छोड़ने वाला प्रोग्राम इसमें विचार करके बोला था मैं, वनम एव जगाम हम। तो प्रत्येक शब्द है यहाँ पर, तो हमने केवल एक ही शब्द की चर्चा की। देखिए संभावना शची प्राण प्रभु जो है वो तो अभी यहाँ नहीं है, संभावना शायद कल सुन सकते हैं। आज एक ही शब्द के भाव को समझा, एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति। जब बहुत अच्छी तरह से कर्दम मुनि ने कपिल भगवान के वचनों को सुना तो प्रीत, जंगल गए थे वन में और एकदम प्रसन्न होकर गए, टेंशन में नहीं गए थे। तो वन में वह जगाम मतलब वन मतलब विश्व, भजन के लिए भजन के मार्ग में निकल गए, प्रसन्न होकर निकले। तो भजन मतलब कोई बोझा नहीं था उनके लिए। तो हमारा भी जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा, हमारा भजन जो है आनंद का कारण बनेगा। अभी भजन है परंतु भजन में आनंद उतना नहीं है, इसलिए उसको वैधी कहा जाता है। वैधी मतलब, वैधी शब्द का अर्थ है अनिच्छा पूर्वक जब भगवान की सेवा की जाती है। गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में अनिच्छा पूर्वक इन मन और इंद्रियों से की गई सेवा, यह वैधी भक्ति की परिभाषा है। गुरु से सुन लिया, साधु संतों से सुना है, शास्त्र में पढ़ लिया, तो क्या कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, इंद्रियों की इच्छा नहीं है, सुबह क्या इच्छा हो रही, बढ़िया सो जाओ आराम से और थोड़ा सुना दो। परंतु इतनी बार सुन लिया है, दो तीन ब्रह्मचारी क्लास में सुन लिया, मंगल आरती उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त नहीं तो ब्रह्मचारी नहीं सुन लिया, तो अब थोड़ा भय बना हुआ है तो इसलिए उठ रहे हैं, परंतु आह्लाद और आनंद नहीं है। तो ऐसी भक्ति वैधी भक्ति होती है। परंतु जब वैधी से आप राग में आते हैं तो जो कोशिश प्रयास ये लक्ष्य यही है। वैधी भक्ति का लक्षण क्या है, राग अपना रागा रागा शब्द भूल गया, रागापनुत्वात तो भी कल देख लेंगे हम। वैधी का प्रयोजन है कि अंततः राग के दूसरे सोपान पर हम पहुंचे, मतलब राग मतलब प्रेम आ जाता है ना, राग मराठी राग नहीं जो माला राग ये तो है। वो वाला राग नहीं, राग मतलब प्रेम, भगवान के लिए प्रेम आने लगे आपके मन में, तो फिर वैसा जो भजन है वो भजन कैसा होगा, प्रीत, प्रीत के साथ प्रेम के साथ वह भजन संभव हो सकेगा। तो और दो प्रमुख विषय थे इसमें, दक्षिणीकृत्य तम प्रीत वनमेव जगाम, वन की ओर प्रस्थान किए। तो क्यों प्रस्थान किए उस विषय को हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को टीका टिप्पणी, श्रीमद्भागवतम की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।